नमस्कार भारत, तारीख 29 अक्टूबर, दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। कांगो के कसाई प्रांत में करीब 30 लाख लोगों के सामने भुखमरी का संकट, संयुक्त राष्ट्र ने की मदद की अपील।
Kasai is a disaster and it's heartbreaking to see 3.2 million people.
छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडी स्कैंडल की जांच सीबीआई के हवाले, लेकिन विपक्ष उठा रहा है सरकार की मंशा पर सवाल।
गिरम घाटी में जो षड्यंत्र हुआ है, सीबीआई से जांच की घोषणा किए 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक की जांच शुरू नहीं हुई है, तो सरकार की घोषणा पे कितना विश्वास किया जा सकता है।
और अमेरिका के टेक्सास में हुई बिहार की बच्ची की मौत के मामले में गोद लेने वाले पिता के बाद मां पर भी कस सकता है शिकंजा। होगी उर्दू अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, रजनीश कुमार से। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख ने कांगो में जारी मानवीय संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। संघर्ष से तबाह हुए कासाय प्रांत के पहले दौरे में डेविड बिजली ने बीबीसी से कहा कि 30 लाख से ज़्यादा लोग भूख के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। डेविड और उनकी टीम ने देखा कि कुपोषण के कारण बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं और अगर तत्काल मदद नहीं पहुंचाई गई तो आने वाले कुछ महीनों में हज़ारों लोगों की मौत हो सकती है। कासाय में अगस्त 2016 में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में एक रूढ़िवादी नेता के मारे जाने के बाद संघर्ष शुरू हुआ था। दो जोरदार धमाके से सोमालिया की राजधानी मोगादिशु दहल गई। इन धमाकों में कम 14 लोग मारे गए हैं। दो हफ्ते पहले ही मोगादिशु में एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें करीब 350 लोग मारे गए थे। शनिवार को एक कार बम धमाका वहां के चर्चित होटल के पास हुआ। इसके ठीक 20 मिनट बाद पुराने संसद भवन के पास एक और धमाका हुआ। इस धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक चरमपंथी अल शबाब ने ली है। धमाके के चश्मदीद मोहम्मद अहमद महमूद ने कहा, मैं होटल के सामने ड्राइव कर रहा था। एक सैनिक छोटी लग्जरी कार में लोगों से बात कर रहा था, तभी जोरदार धमाका हुआ। कार में दो महिलाएं थी, लेकिन मुझे नहीं पता वे कहां गईं। ये थे सोमालिया में धमाके के चश्मदीद मोहम्मद अहमद महमूद। स्पेन की सरकार ने कहा है कि वो कैटालोनिया में दिसंबर में होने वाले चुनाव में बर्खास्त नेता कार्लस पुजिमोंट की भागीदारी का स्वागत करेगी। मैड्रिड में सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पुजिमोंट को बर्खास्त किए जाने के बाद भी राजनीति में बने रहने का हक है। 27 अक्टूबर को कैटालोनिया की स्थानीय संसद ने स्पेन से अलग स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी थी। यूरोपीय यूनियन कैटालोनिया के अलग देश बनने का विरोध कर रहा है, लेकिन यूरोपियन संसद के सदस्य जोर्डी सोले ने कहा, यूरोप में एक नए देश का जन्म हुआ है। यह देश है रिपब्लिक ऑफ कैटालोनिया। इसका जन्म लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। संसद में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने बहुमत से स्पेन से अलग देश बनाने की घोषणा की है। ये थे जोर्डी सोले के शब्द। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रॉयल नेवी को ड्रग परीक्षण अनिवार्य करने का आदेश दिया है। हाल ही में परमाणु पोत के चालक दल के 9 सदस्य कोकीन के अवैध इस्तेमाल में निलंबित किए गए थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगस ने कहा है कि राजधानी हवाना में अमरीकी दूतावास के कर्मियों पर कोई हमला नहीं किया गया है। वाशिंगटन के कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए रोड्रिगस ने कहा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल द्विपक्षीय संबंधों को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। फिलीपींस में संयुक्त राष्ट्र का वन्य जीव संरक्षण सम्मेलन खत्म हो गया। इस सम्मेलन में आए दुनिया भर के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गए कि वन्य जीवों की विलुप्त होती 34 प्रजातियों को बचाने की जरूरत है। रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहले क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। रवांडा में क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने देश के आर्मी प्रमुख को बदल दिया है। अल सीसी ने चरमपंथियों के हाथों काहिरा में दर्जनों सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने के एक हफ्ते बाद यह फैसला लिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
The biggest prize in under 17 world football, it belongs to England.
भारत की मेजबानी में हुए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप पर इंग्लैंड ने कब्जा जमा लिया है। ये इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की पहली खिताबी जीत है। कल कोलकाता में हुए फाइनल मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद इंग्लिश टीम ने कैसे किया कमबैक, ये हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार भारत में बात छत्तीसगढ़ के कथित सीडी स्कैंडल को लेकर जारी राजनीति की भी होगी और गुजरात में कांग्रेस को दिए अल्टीमेटम के पीछे पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की क्या मंशा है ये भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जैसा कि आपने रजनीश कुमार से समाचारों में सुना, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कांगो के कसाई प्रांत में करीब 30 लाख लोगों के सामने पेट भरने का भारी संकट है। भूख उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से तुरंत मदद नहीं मिली तो अगले कुछ महीनों में हजारों लोग दम तोड़ सकते हैं। कांगो में लंबे वक्त से अशांति की स्थिति है। कसाई प्रांत अमूमन शांत था लेकिन साल 2016 के अगस्त महीने से यहाँ भी भीषण संघर्ष छिड़ गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख डेविड बीजली अपनी टीम के साथ कसाई का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया,
कसाई इज अ डिजास्टर एंड इट्स हार्टब्रेकिंग टू सी 3.2 मिलियन पीपल सेवियरली।
कसाई एक त्रासदी बन चुका है। 32 लाख लोगों को भूख के भयावह संकट से जूझते देखना कितना मुश्किल है। इन्हें पता नहीं है कि आने वाले दिनों में खाना कहां से मिलेगा। अगर हमने मदद नहीं पहुंचाई तो आने वाले महीनों में यहां हजारों बच्चे भूख से दम तोड़ देंगे। ये हताश करने वाली स्थिति है। हमारी टीम यहां दौरे पर है और हम लोगों को जले हुए घर और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ये बच्चे लगातार कमजोर हो रहे हैं। जाहिर है कई बच्चों ने दम तोड़ दिया है। अगर तत्काल यहां मदद नहीं पहुंचाई गई तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। ये थे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख के शब्द। उनकी अपील का कितना असर होगा और क्या स्थिति में कोई बदलाव आएगा ये देखना अहम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक धुरी और वहां की पूरी राजनीति एक कथित सेक्स सीडी पर टिक गई लगती है। आरोपों के घेरे में एक प्रमुख मंत्री का नाम होने की वजह से विरोधियों के निशाने पर आई राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया है। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इसे मामले को दबाने की कोशिश बता रही है और विरोध तेज करने के इरादे में है। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की कथित आपत्तिजनक सीडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। कांग्रेस नेताओं ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। कहीं मंत्री के पुतले जलाए गए तो कहीं उनके विधानसभा क्षेत्र में गंगा जल का छिड़काव कर कथित रूप से उसे पवित्र बनाया गया। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री की कथित सीडी लेकर थाने पहुंच गए।
रायपुर की आम जनता के पास में सीडी है, पूरा देश इस सीडी को देख जानता है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा निकल कर सामने आ चुका है, हमको भी गिरफ्तार कीजिए। हम थाने में ये सीडी लेकर, हम तमाम कांग्रेस के साथी आज थाने में ये सीडी को लेकर आए हैं, अपनी गिरफ्तारी देने आए।
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार पूरे दिन सफाई देने की मुद्रा में नजर आई। लेकिन बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि मंत्री राजेश मूणत की कथित आपत्तिजनक सीडी और उस मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना था कि सीबीआई से जांच की मांग विपक्ष ने भी की है।
कांग्रेस की भूमिका इस सीडी में क्या है, पहले तो यही प्रस्ताव है, फॉरेंसिक लैब में जांच होगा, सारी जांच के लिए आदेशित हो गया है, तो अब इसमें
आरोपों में घिरे मंत्री राजेश मूणत को भी विश्वास है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जो छत्तीसगढ़ की राजनीति की फिजा को जो ब्लैकमेलिंग के आधार पर चेंज करना चाहते हैं, वो जनता के बीच में उनके चेहरे उजागर होना चाहिए। मानहानि का दावा भी करूंगा, नोटिस भी दूंगा, अगर क्रिमिनल केस बनेगा तो क्रिमिनल केस भी लागू करूंगा। सरकार ने सबसे बड़ा जो फैसला किया सीबीआई का, वो इस बात का परिचायक बनता है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोगों को सबक मिले।
लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस का कहना था कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने इसके कारण भी गिनाए।
हमने स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच की मांग की है। विधानसभा में जीरम घाटी में जो षड्यंत्र हुआ है, सीबीआई से जांच की घोषणा किए 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक की जाँच शुरू नहीं हुई है, तो सरकार की घोषणा पे कितना विश्वास किया जा सकता है।
इस बीच कल देर रात रायपुर की पुलिस पत्रकार विनोद वर्मा को गाजियाबाद से सड़क मार्ग से लेकर रायपुर पहुंची। उन्हें माना स्थित थाने में रखा गया है। उन्हें आज स्थानीय अदालत में पेश किया जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लोग अब से कुछ ही घंटों बाद राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास का घेराव करने के लिए रवाना होंगे। जाहिर है मंत्री के सीडी और पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आज भी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गहमा गहमी बनी रहेगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
गहमा गहमी केवल रायपुर में नहीं है, दिल्ली में भी बनी हुई है। कथित सेक्स सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में कल शाम को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बैठक हुई। इस मौके पर मौजूद पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सुनिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जुटे पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कार्यक्रम की शुरुआत में बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बदले की भावना से काम किया है।
मैं एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के तौर पर ये चार्ज करता हूँ रमन सिंह सरकार पर कि उन्होंने विनोद वर्मा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंसाया क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने उनकी सरकार के पत्रकार विरोधी जो हथकंडे हैं उनको एक्सपोज किया था और इस एक्सपोज किए जाने से वो पहले से बेचैन थे और उनको जानबूझकर योजना के तहत बदनाम करने के लिए अरेस्ट किया गया और इस अरेस्ट के पीछे कोई और लॉजिक नहीं है।
पत्रकार विनोद वर्मा को गुरुवार रात को उनके गाजियाबाद स्थित घर से हिरासत में ले लिया गया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जुटे पत्रकारों ने इस तरह से की गई गिरफ्तारी को प्रेस पर हमला बताया। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने कहा कि अगर विनोद वर्मा ने कोई अपराध किया हो तो पुलिस मामला दर्ज करे, मगर अभी तक सामने आई जानकारी से लगता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है।
आप अपमानित कर रहे हैं और आप अपमानित उस अकेले आदमी को नहीं कर रहे, हम सबको कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह हमला एक व्यक्ति पर नहीं है, आपने किसी ने अपराध किया है, जांच कीजिए। मेरे ख्याल में हमारी सारी बिरादरी जो है वो साथ देगी कि ठीक है, अगर हमें कोई अपराधी है, हमें कोई चोर है, हमें कोई लुच्चा है, आप उसको पकड़िए, आप उस पर कार्रवाई कीजिए।
विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, पोर्टल्स और चैनल से जुड़े पत्रकारों ने इस सभा में शिरकत की। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त ने कहा कि इस मामले में कई सारे पेच हैं और पुलिस की कार्रवाई ही संदेह के घेरे में है।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है कि एसीडी तो हमारे पास भी है। छत्तीसगढ़ के तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी एसीडी है। तो ऐसे में किसी एक पत्रकार को गिरफ्तार करना, जाहिर सी बात है कि सिर्फ सीडी का ही मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को बंद करने की एक साजिश भी है।
पत्रकारों के साथ साथ इस कार्यक्रम में बुद्धिजीवी वर्ग भी मौजूद रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने बीबीसी से कहा कि ये संकेत स्पष्ट है कि मामला सिर्फ विनोद वर्मा का नहीं है।
ये गिरफ्तारी जिस तरह हुई है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इसमें संदेश बहुत स्पष्ट है कि आप सबको अलग अलग पकड़ा जाएगा, अलग अलग आरोपों में पकड़ा जाएगा और इस तरह के आरोप आप पर लगाए जाएंगे जिससे जनता में भ्रम पैदा हो जाए कि आपको पत्रकार होने के चलते नहीं पकड़ा गया है बल्कि आपको एक ब्लैकमेलर होने के चलते पकड़ा गया है, आपको एक उठाईगीर होने के चलते पकड़ा गया है।
इस कार्यक्रम में इस बात को लेकर सहमति बनाई गई कि छत्तीसगढ़ सरकार स्पष्ट करे कि अगर विनोद वर्मा के खिलाफ कोई सबूत है तो सार्वजनिक किया जाए या फिर उन्हें परेशान न किया जाए। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
अगली खबर गुजरात से। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस के साथ आने की चर्चा जोरों पर रही है, लेकिन हार्दिक पटेल ने कल ट्विटर के जरिए कांग्रेस के सामने एक शर्त रख दी है। हार्दिक ने कांग्रेस से 3 नवंबर तक ये बताने के लिए कहा है कि वो पाटीदारों को संवैधानिक तरीके से कैसे आरक्षण देगी। हार्दिक के इस बयान के राजनीतिक संकेत समझने के लिए हमारे साथी आदर्श राठौर ने अहमदाबाद में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल से बात की।
मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी अहमदाबाद आए तब होटल ताज में उनकी मुलाकात को लेकर काफी विवाद हुआ। हार्दिक मिले या नहीं मिले उस पर विवाद चला, लेकिन मेरी जो जानकारी है हार्दिक से उनकी मुलाकात हुई थी। तभी ही हार्दिक ने राहुल गांधी के सामने ये अपनी बात रखी थी कि हम अगर कांग्रेस में आते हैं तो पहली हमारी जो मांग है कि पाटीदार को आरक्षण कैसे मिलेगा वो स्पष्ट रूप से हमें बताया जाए, उसका रास्ता दिखाया जाए, संवैधानिक तौर पर किस प्रकार मिल सकता है, क्योंकि भाजपा ने भी उनको ईबीसी के तहत आरक्षण देने की बात की, आरक्षण दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। हार्दिक ने जो 3 नवंबर तक का टाइम कांग्रेस को दिया है, हार्दिक एश्योरेंस चाहता है कि भाजपा ने जिस प्रकार पाटीदार को मूर्ख बनाया आरक्षण को लेके, वैसे ही कांग्रेस भी उन्हें मूर्ख नहीं बनाए और कोई सही में अगर रास्ता है आरक्षण के लिए तो रास्ता दिखाए और कानूनी तौर पे मिलने वाला आरक्षण कैसे कोर्ट में टिक पाएगा ये स्पष्ट करवाना हार्दिक चाहता है।
मान लीजिए कांग्रेस जो है वो इस मामले में अगर स्पष्ट रुख नहीं अपना पाती है या संतुष्ट नहीं कर पाती है हार्दिक पटेल को, तो हार्दिक पटेल का अगला कदम क्या हो सकता है?
हार्दिक की अब मुश्किलें बढ़ चुकी है, उसको ये भी मालूम है कि भाजपा भी आरक्षण नहीं दे सकती और कांग्रेस भी आरक्षण नहीं दे पाई अगर, तो हार्दिक की खुद की मुश्किलें और पाटीदार की खुद की मुश्किलें भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाना तय कर लिया है मानसिक तौर पे और हार्दिक ने जम के नरेंद्र मोदी अमित शाह भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस स्थिति में अगर कांग्रेस भी अगर कोई रास्ता नहीं दिखा पाती तो हार्दिक के लिए बड़ी मुश्किल ही हो सकती है कि वो कहां जाए।
एक तरह से अगर देखें कि अगर हार्दिक अगर बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहुंच रहा है
जी,
तो वो कांग्रेस के खिलाफ।
मेरा मानना ये है कि हार्दिक पिछले 10 दिनों से अपनी जो सभाएं कर रहा है, रैली कर रहा है और जिस तादाद में लोग हार्दिक के पीछे आ रहे हैं, मुझे एक तीसरी आशंका है, मेरे पास उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन जिस तादाद में लोग उसके पीछे आ रहे हैं मुझे लगता है कि हार्दिक शायद एक तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ रहा है कि भाजपा भी अगर नहीं दे पाती, कांग्रेस भी अगर कुछ नहीं दे पाती तो पाटीदार अपनी एक अलग पार्टी बनाए, ऐसे मोड़ में भी हार्दिक जा सकता है।
राजनीति में हमेशा तमाम तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले रहते हैं और प्रशांत दयाल भी ऐसी संभावना की बात कर रहे थे। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। रजनीश कुमार मौजूद हैं अखबारों के साथ और पन्ने भी पलट चुके हैं। क्या खबरें हैं रजनीश?
आज कई खबरें बड़ी प्रमुखता से कई अखबारों में छपी है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान टाइम्स की जो लीड खबर है उसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात मनीला में होगी क्योंकि मनीला में ईस्ट एशिया सम्मेलन शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी अखबार के मुताबिक 12 नवंबर को मनीला रवाना होने वाले हैं और 14 नवंबर को वापस होंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति 12 नवंबर को वहां पहुंच रहे हैं और 13 नवंबर तक वहां रहेंगे
जी।
दैनिक जागरण की एक खबर है जो कल पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बयान में कहा है कि कश्मीर में आज़ादी का मतलब और ज़्यादा स्वायत्तता होता है, तो उन्होंने कहा है कि और ज़्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए कश्मीर में। अखबार ने लिखा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चिदम्बरम की इस मांग की आलोचना की है, वहीं स्मृति ईरानी ने भी इसे शर्मनाक बताया है। दक्षिण भारत से प्रकाशित होने वाला अखबार डेकन क्रॉनिकल ने पीएम मोदी के एक बयान को लीड खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक मोदी ने कहा कि बीजेपी में कोई एक आवाज़ नहीं है, वहाँ पे कई आवाज़ें हैं
जी, अलग अलग तरह की आवाज़ें, ये विपक्षी भी कहते हैं।
बिल्कुल, मोदी ने पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की बात कही है और अखबार ने कहा है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधा है
कि कांग्रेस में एक आवाज़ है।
हाँ, उनका कहना तो ऐसा ही लगता है। द स्टेट्समैन ने हार्दिक पटेल के उस बयान को लीड बनाया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को 3 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया है कि आप बताइए कि आप मुझे संवैधानिक आरक्षण किस आधार पर देंगे,
जिसको लेकर आदर्श ने बात की प्रशांत दयाल से। और मैं दैनिक भास्कर की भी एक खबर गुजरात से जुड़ी हुई देख रहा हूँ कि गुजरात में 1985 के बाद पहली बार जाति के आधार पर चुनाव होगा। दैनिक भास्कर ने इसको लीड खबर बनाया है
जी। अब तक कहा जाता रहा है कि गुजरात उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है, वहाँ विकास के नाम पर चुनाव होता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी गुरुवार को बीमार पड़ने के बाद सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था, जो कि अब हॉस्पिटल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है और उनकी सेहत अब बिल्कुल ठीक है।
राहुल गांधी ने भी कल ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी दी थी
जी।
और जनसत्ता की एक खबर मैं देख रहा हूँ जिसमें ये एंकर स्टोरी उन्होंने बनाया है, बापू और अब्बा जो शब्द हैं उन्हें भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जगह मिल गई है जी। बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए, अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा पर भी गौर कर लेते हैं, जिसे तैयार किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने और पेश कर रहे हैं रजनीश कुमार।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते नवाज शरीफ और उनके परिवार के लोगों पर चल रहा मुकदमा, अमरीकी विदेश मंत्री का एशियाई दौरा और भारत प्रशासित कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायली हमले की 70वीं बरसी सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बात अमरीकी विदेश मंत्री रिक्स टिलरसन के मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के दौरे की। रिक्स टिलरसन ने 20 से 27 अक्टूबर के बीच सऊदी अरब, कतर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की यात्रा की। अखबार जंग के मुताबिक अमरीकी विदेश मंत्री का पाकिस्तान में उस गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं हुआ जैसा कि आमतौर पर पाकिस्तान में किसी भी अमरीकी मेहमान का होता है। अखबार जंग ने सुर्खी लगाई है, अमरीकी विदेश मंत्री का ठंडा स्वागत, विदेश मंत्रालय के अधिकारी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए। अखबार के अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि वो चरमपंथी संगठन तालिबान को अपने यहाँ सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराता है। अमरीका के इस आरोप के कारण दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है और अखबार के मुताबिक यही कारण है कि पाकिस्तान पहुँचने पर अमरीकी विदेश मंत्री का स्वागत बहुत ही ठंडे तरीके से किया गया। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पाकिस्तान की विशेष अदालत नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में चल रहे मुकदमे इस हफ्ते की सुर्खियों में रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी दोनों ही भ्रष्ट हैं और अब नवाज शरीफ के बाद जरदारी की बारी है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक एक चुनावी जलसा को संबोधित करते हुए इमरान खान का कहना था, सरकारी इदारे छोटे चोर तो पकड़ लेते हैं लेकिन बड़े चोर और डाकुओं पर कोई हाथ नहीं डालता। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों ने 27 अक्टूबर को काले दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी अखबार नवाए वक्त लिखता है कि 70 साल से चले आ रहे भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों ने काला दिवस मनाया। अखबार के अनुसार दुनिया भर में कश्मीरियों ने इस काले दिवस के रूप में मनाया और पूरी घाटी में मुकम्मल हड़ताल रही। अखबार के अनुसार पाकिस्तानी संसद ने इस मामले में एक प्रस्ताव भी पास किया। प्रस्ताव में भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सेना की कथित ज्यादतियों की निंदा की गई। इसके अलावा कश्मीर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की लगातार खामोशी पर अफसोस का इजहार किया गया।
समीक्षा सुना रहे थे रजनीश कुमार। और अब बात एक ऐसी बच्ची की जो पिछले साल तक बिहार के एक अनाथालय में थी। उसे एक परिवार मिला, अमेरिका में रहने वाले एक दंपति ने उसे गोद लिया, वो बच्ची अमेरिका गई और कुछ दिन पहले उसकी मौत की खबर आई। इस मामले में 3 साल की इस बच्ची को गोद लेने वाले उसके दत्तक पिता गिरफ्तार हैं और अब मां पर भी शिकंजा कसने की आशंका है। एक रिपोर्ट के साथ वॉशिंगटन से इरम अब्बासी।
बीबीसी हिंदी से बात करते हुए रिचर्डसन पुलिस डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन साजन केवन परलिक ने इस सवाल के जवाब में कि क्या मां को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, इसलिए पुलिस तमाम ऑप्शंस पर फोकस कर रही है और मजीद अरेस्ट मुमकिन हो सकती हैं। पुलिस ऑफिशियल का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब मां सिना मैथ्यूज के लॉयर ने 2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट में क्लेम किया है कि मां का गोद लेने वाली बेटी शरण के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उन्होंने उसकी बॉडी ठिकाने लगाने में कोई मदद की। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि पुलिस के साथ वो पूरा कोऑपरेट कर रही है ताकि शरण के मर्डर के रीजंस या वजूहात पता चलाई जा सके। मैथ्यू घराने ने 3 साल शरण को बिहार के मदर ट्रेसा ऑर्फनेज एंड चिल्ड्रंस होम से 2016 में अडॉप्ट किया था। टेक्सास पुलिस को शरण की बॉडी रिचर्डसन के एरिया में एक ड्रेन से पिछले हफ्ते ही मिली, जबकि वेस्ले मैथ्यूज पिता ने अक्टूबर 7 को अपनी अडॉप्टेड बेटी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को सबमिट करवाई थी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स और रेड के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में शरण की डेड बॉडी गुज़िश्ता हफ्ते ही मिली। वेस्ले मैथ्यूज की स्टेटमेंट चेंज होने के बाद उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया है और अब वो डेलिस काउंटी जेल में हैं। वेस्ले मैथ्यू के लॉयर ने पुलिस को जो बयान जमा कराया है उसमें कहा गया है कि वेस्ले मैथ्यूज शेरन को दूध पीने को कह रहे थे मगर वो उनकी बात नहीं सुन रही थी। फिर मैथ्यूज ने फिजिकली शेरन को असिस्ट किया कि वो दूध पिए, जिसके बाद 3 साल शेरन ने चोक करना शुरू कर दिया, उसकी सांस मध्यम हो गई और फिर कुछ देर बाद मैथ्यूज को शेरन की पल्स महसूस नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि बेटी की डेथ हो गई है। पहली स्टेटमेंट से डिफरेंट स्टेटमेंट देते हुए इस मर्तबा शेरन के पिता ने पुलिस के सामने एडमिट किया कि उन्होंने खुद शेरन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। बीबीसी हिंदी से ईमेल के जरिए बात करते हुए सर्जेंट केमन ने कहा कि पिता को पहले अरेस्ट किया गया था सिर्फ बच्ची की जिंदगी खतरे में डालने के लिए, मगर अगले ही दिन उनको रिहा कर दिया गया। उनका मजीद कहना था कि लेकिन बॉडी को खुद ठिकाने लगाने की नई स्टेटमेंट के बाद उनको दोबारा अरेस्ट किया गया है और अब उन पर बच्ची को नुकसान पहुंचाने का जुर्म लगाया गया है, जिसकी सज़ा कम से कम 90 ईयर्स जेल या फिर उम्र भर कैद भी हो सकती है। शेरन का मर्डर किस वजह से हुआ इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं की गई। रिपोर्ट कब सामने आएगी इस बारे में पुलिस अभी कुछ नहीं कह सकती। इरम अब्बासी, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी।
और अब बात फुटबॉल मैदान में इंग्लैंड की जीत की और क्रिकेट मैदान पर भारत की उम्मीद की, जान लेते हैं खेल की दुनिया की हलचल।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
जियानी इन्फेंटिनो, फीफा प्रेसिडेंट, विल हैंड ओवर द बिगेस्ट प्राइज इन अंडर 17 वर्ल्ड फुटबॉल। इट बिलोंग्स टू इंग्लैंड।
आखिरकार कल भारत में समाप्त हुए फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट को इंग्लैंड के रूप में नया चैंपियन मिल ही गया। इंग्लैंड ने 66,000 से अधिक दर्शकों से खचाखच भरे कोलकाता के विवेकानंदा युवा क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल में स्पेन को 5-2 से मात दी। कहां तो एक समय स्पेन ने सर्जियो गोमेज के 10वें और 31वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत 2-0 की बढ़त ली हुई थी और कहां उसके बाद इंग्लैंड ने लगातार 5 गोल कर स्पेन के मुंह से जीत छीन ली। इंग्लैंड की खिताबी जीत में ब्रेस्टर ने 44वें, गिब्स व्हाइट ने 58वें, मार्क गुइन ने 84वें और फिल फोर्डन ने 69वें और 88वें मिनट में गोल किए। जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी खुशी और स्पेनिश खिलाड़ी गम के आंसुओं में डूब गए। जबकि इससे पहले ब्राजील ने माली को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ब्राजील के लिए एलन सूजा ने 55वें और यूरी अल्बर्टो ने 88वें मिनट में गोल किए। वहीं भारत के के श्रीकांत फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। कल खेले गए सेमीफाइनल में के श्रीकांत ने भारत के ही एचएस प्रणय को 1 घंटे 2 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 14-21, 21-19, 21-18 से मात दी। लेकिन महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में भारत की पीवी सिंधु जापान की अकाने यामागुची से 37 मिनट में ही 21-14, 21-9 से हार गई। उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज कानपुर में तीसरा और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने मुंबई में खेले गए पहले मुकाबले में भारत को 6 विकेट से मात दी थी, लेकिन इसके बाद भारत ने पुणे में खेले गए दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। अगर आज भी भारत जीता तो ये उसकी लगातार 7वीं एक दिवसीय सीरीज होगी जो उसके नाम होगी।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर रजनीश कुमार से।
बीबीसी समाचार। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख ने कांगो में जारी मानवीय संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। संघर्ष से तबाह हुए कसाय प्रांत के पहले दौरे में डेविस बिजली ने बीबीसी से कहा कि 30 लाख से ज्यादा लोग भूख के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। 2 जोरदार धमाके में सोमालिया की राजधानी मोगादिशु दहल गई। इन धमाकों में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। स्पेन की सरकार ने कहा है कि वो कैटलोनिया में दिसंबर में होने वाले चुनाव में बर्खास्त नेता कार्लस पुजिमोंट की भागीदारी का स्वागत करेगी। मैड्रिड में सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पुजिमोंट को बर्खास्त किए जाने के बाद भी राजनीति में बने रहने का हक है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोग्रीदस ने कहा है कि राजधानी हवाना में अमरीकी दूतावास के कर्मियों पर कोई हमला नहीं किया गया है। मिस्र रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहले क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है।
बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया शाकिर आलम ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया नवीन नेगी ने। शाम के वक्त 7:30 बजे आपसे अगली मुलाकात दिन भर में होगी। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।